दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
एरिक भाई, ओम शांति ब्रदर केन, आपका हार्दिक स्वागत है इस दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप कैसे हैं? सब कुछ कुशल मंगल है? केन भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं वास्तव में इस समय हमारे रिट्रीट सेंटर में बैठकर सामने वाले बहुत ही खूबसूरत जंगल को देख रहा हूँ। एरिक भाई, अच्छा ठीक है, तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं हमें जंगल में ले जाने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या हम जंगल से उस पार चलकर सत्य में पहुंच पाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यह दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम हमें अपने स्वर्णिम युग सत्युग के दृश्य से जोड़ता है और जो विधि स्वतः ही हमें वहां के अपने अस्तित्व का अनुभव कराती है। और हमें अपने आप आपके आने से बहुत खुशी है क्योंकि हमें आपकी आवाज प्यारी लगती है और मैं जानता हूं कि आपकी वाणी बहुत वर्षों से ज्ञान से सुगंधित है। आपकी वाणी में गीत है, काव्य है, दया भाव है, प्यार है, मृदुता है। हम अर्थ करते हैं कि आप अपनी निर्मल बुद्धि और काव्यात्मक वाणी द्वारा स्वर्णिम युग से जुड़े और आप उसके विषय में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इसकी चर्चा करें। आप स्वर्णिम युग के आपके अनुभवों का वर्णन करें, उससे संबंधित उन दृश्यों और चित्रों का वर्णन करें जो आपको एक नई दुनिया की तरफ निश्चित ही प्रेरणादायी लगे हैं। केन भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई स्पष्ट स्थूल चित्र है क्योंकि स्वर्णिम युग में प्रकृति सुंदरता के अपने चरम सीमा पर होने के कारण उसकी यहां से तुलना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि किसी के लिए भी देवताओं की तस्वीरें बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यह हो सकता है कि भारतवर्ष के और अन्य स्थानों के संग्रहालयों में जो चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उनका संदर्भ ले सकते हैं। परंतु मुझे निश्चित ही अंतर्ज्ञान द्वारा महसूसता होती है कि वह कैसे होंगे, खासतौर पर वहां के आपसी संबंध और भाषा, किस तरह हम बात करते हैं, किस तरह हम निर्देश देते हैं, संचलन करते हैं, हम प्रकृति के संपर्क में कैसे आते हैं, मनुष्य होने के नाते हम पारस्परिक व्यवहार कैसे करते हैं। मुझे निश्चित ही ऐसे दृश्यों के बहुत बहुत अनुभव हैं। एरिक भाई, क्या आप हमसे कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं? केन भाई, उदाहरण के तौर पर मैं अपने आप को प्रशिक्षण देता हूं कि मैं अपने भाषा में विशेषणों का प्रयोग ना करूं। मैं बहुत दिन बिताता हूं मेरी स्वर ध्वनि को कम से कम करने में, कम से कम शब्दों का प्रयोग करने में। मैं अभ्यास करने की कोशिश करता हूं कि इन वृक्षों को मैं कुछ संबोधन ना करूं, फूलों के नाम भी न लूं। वे इस दुनिया के सिर्फ खूबसूरत पुर्जे हैं, ना कि यह कोई नामांकित वस्तुएं हैं। और बस शब्दों के पार चले जाएं, किसी भी चीज की व्याख्या न करें, तो मैं कई घंटे बिता देता हूं व्याख्या रहित स्थिति में। क्योंकि जब हम वस्तुओं का नामांकन करते हैं तब हम उनकी व्याख्या करने के साथ साथ उनके बारे में अपनी राय भी दे देते हैं। वह कैसी स्थिति है जिसमें हम संपूर्ण रीति व्यवहार रहित हों? वह कैसी स्थिति है जिसमें हम आसपास की वास्तविकता से संपर्क में आए परंतु बिना शब्दों की लेन देन के? इन्हीं अनुभवों के स्रोतों का मैं खूब आनंद लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक और बात का आनंद लेता हूँ, आत्मा के मूल संस्कारों में रमण करने का। क्योंकि संपूर्णता के संस्कार मेरे अंदर अभिलिखित हैं, रिकॉर्डेड हैं, तो मैं इन तक पहुंच सकता हूँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अक्सर करके मैं यह करता हूँ, जैसे कि हम किसी शहर के 5वें एवेन्यू सड़क पर चले जा रहे हो, आसपास की हवा महसूस कर रहे हैं। सहज नहीं है परंतु किसी पंछी की तरह, किसी मधुमक्खी की तरह जो वृक्षों में सैर कर रही हो, परंतु नामुमकिन नहीं है उस अवस्था में 5 मिनट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मैं अक्सर यह करता हूं, हमारी थोड़े समय के लिए देवता प्रकृति होने के नाते यह बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। एरिक भाई, क्या आपके ब्राह्मण जीवन में कोई विशिष्ट अनुभव आपने किए हैं जहां आपको लगा कि आप स्वर्णिम युग की गहराइयों की तरफ बढ़े जा रहे हैं, जैसे ज्ञान में चलते आपके अपने पहले पहले दिनों में अनुभव किए? हम सभी ने किए, परंतु आपका अनुभव बहुत भिन्न होगा जिसे आप स्वर्णिम युग कहते हैं। क्या आप उन अति विशिष्ट क्षणों के बारे में हमको बता सकते हैं? केन भाई, कुछ भी जाहिर दृश्य नहीं है, जैसे मन चारों ओर चल रहा है टांगों के सहित। आपका मन पूर्णतः मुक्त है और आंखों की खिड़कियों से सहज देख रहा है। शुरू शुरू में मुझे ऐसे बहुत अनुभव हुए। मुझे आमतौर पर समझ में नहीं आता था कि यह क्या है, परंतु ऐसा लगता कि मेरी आंखें अस्पष्ट रूप से खिड़कियों की तरह थीं, जैसे कि हम वर्णन करते हैं मेडिटेशन में कि मैं कहीं बहुत ही दूर हूं, मैं एक मन हूं, एक मुक्त मन आंखों द्वारा देख रहा हूं बिना कुछ समझे कि यह क्या हो रहा है। ऐसे थे मेरे अनुभव शुरुआत में। बस एक ही संबंध था उस पवित्रता की गहराई से और अबोधता की गहराई से। ऐसे मान लीजिए जैसे आप एक गैर बौद्धिक अवस्था में हैं। हम ऐसी स्थिति का अनुमान भी नहीं लगा सकते, शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति होगी भविष्य में, परंतु निश्चित ही शुरू में मुझे ऐसे अनेक अनुभव हुए जैसे मैं कहीं जुड़ा हुआ था, एक बहुत ही पवित्र और अबोध स्थिति, संपूर्णतः गैर बौद्धिक, कुछ भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ एक मन हूं, दुनिया में चारों ओर भ्रमण कर रहा हूं, और उसी स्थिति में घंटों तक रहता था। ऐसा था शुरू में, और मैं सैर करने के लिए निकल जाता था, अंदर से जैसे स्थलांतरित हो जाता था दूसरे युग में, इस दुनिया के किसी से भी संबंध नहीं। तो यह वर्णन करना बहुत कठिन है, परंतु निश्चित ही शुरुआत में मुझे ज्यादा कुछ समय में नहीं आता था। मुझे कई सारे ऐसे अनुभव हुए हैं। एरिक भाई, हमारी धारणा है कि बाबा हमें स्वर्णिम युग नई दुनिया के लिए तैयारियां करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप कार्य कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिकता पर ताकि नई दुनिया की ओर बढ़ने के लिए कड़ी बना सके। तो आज आप इस धारणा को अपने अनुभव की गहराइयों को और अपने कार्यों को किस तरह से जोड़ते हैं? केन भाई, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सचमुच ही संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव है, और मैं कोशिश करता हूं कि स्वाभाविक आत्म जागृत अवस्था में घूमता रहूं बिना ज्यादा सोचे या बिना कुछ सोचे, बिना किसी व्यक्ति या वस्तु को परेशान किए। मैं उस अनुभव के आधार से वाचा में आता हूं जिसमें मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार सभी एक साथ समन्वय से कार्य कर रहे हों, जैसे कुछ भी घट नहीं रहा है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि हम अपना ध्यान सोचने पर नहीं देते, शब्द सोचने पर नहीं देते, परंतु अनुभवों को सोचने पर देते हैं। इन दिनों मैं अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा हूं कि मैं किसी वस्तु के प्रति कम से कम शब्दों का उपयोग करके उसको ज्यादा से ज्यादा अनुभव करूं। दूसरे शब्दों में कि मेरी सोच पाना ये नहीं कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं शब्दों का उपयोग करके, परंतु स्थलांतरण कर रहा हूं एक अनुभव से दूसरे अनुभव में। यह बहुत दिलचस्प प्रयोग है, परंतु आसान नहीं, क्योंकि हम वास्तव में अपनी शब्दावली और कर्म प्रधानता के गुलाम बन चुके हैं। फिर हमारे शरीर के साथ संबंध सहज और जागृत अवस्था का रहेगा, जैसे कुछ करने के लिए हाथों का उपयोग करना, विशेषता जब मैं भोजन करता हूं तो पूरी शांति से साथ करता हूं, आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करता हूं, सिर्फ भोजन उठाकर मुंह में रखना, यही कार्य। जब मैं औरों के साथ वार्तालाप में आता हूं तो कोशिश करता हूं बिना नाम और विशेषण का प्रयोग किए बोलना और बहुत कम शब्दों में बोलना, फिर भी यह इतना आसान नहीं है। यह केवल ऐसा है जैसे कि मेरे लिए हर व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व में स्थिर हो जाता है, ना कि मेरी सोच से निर्माण हुए उनके अस्तित्व में। इस तरह यह एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है। मैं यह भी पुरुषार्थ करता हूं कि जब मैं कोई कार्य शरीर से करता हूं तो झटके देकर ना करूं, उससे सहजता और लयबद्ध रीति से करने की कोशिश करता हूं। सहज नहीं है, मुझे एहसास होता है कि मेरा यह शरीर ज्यादा मदद नहीं करता, परंतु शरीर में प्रवेश करना, उसका उपयोग करना और फिर उससे अलग हो जाना सूक्ष्म रीति से, इस तरह मेरा पुरुषार्थ चलता है। एरिक भाई आध्यात्म के अभ्यासक और ब्राह्मण होने के नाते हमें कौन सी चीज तीव्र गति से आगे बढ़ने से रोकती है? बाबा कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए नई दुनिया बनाने की, परंतु यहां से लेकर हमारी अगली वास्तविकता में अर्थात नई दुनिया में जाने के रास्ते में वो कौन सी रुकावट है? केन भाई, जाहिर है सिर्फ मेरे लिए वह रुकावट है केन का अस्तित्व। जैसे देह का भान नहीं है, वास्तव में सब कुछ मेरे इस अस्तित्व की पहचान से जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को केन के रूप में ना मानूं, ना देखूं। केन जो कुछ भी है और केन ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ मुझे याद है इस जीवन का या मेरे ब्राह्मण जीवन का, मैं इस ज्ञान में इतने सालों से चल रहा हूं, यह तो बड़ा हंसी भरा रास्ता है। उसके पहले क्या हुआ था मैं सचमुच भूल गया हूं, मेरा मन उतने दूर तक जाता ही नहीं। फिर भी मेरा एक अस्तित्व निर्माण हुआ है ब्राह्मण के रूप में। मैंने जो कुछ किया नहीं किया, जो भी गलतियां मैंने की, जो भी सही कार्य मैंने किए, मुझे यह सब रुकावट लगती है, क्योंकि अपनी खुद की कहानी से हमारा सूक्ष्म लगाव होता है और मुझे अपनी इस कहानी से परे जाना है। मैं यह कहानी नहीं हूं, मैं अनेक कहानियों का एक नायक हूं। यह सूक्ष्म पुरुषार्थ है। अगर किसी ने मुझे मेरे पिछले जन्म के शरीर का चित्र दिखाया तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, पूछूंगा यह कौन है। तो क्या मैं अपने इस शरीर से लगाव मुक्त हूं, जैसे मैं उस पुराने शरीर के चित्र से लगाव मुक्त हूं? ऐसे लगाव मुक्ति चाहिए तो मैं कहूंगा कि वह क्या चीज है जो हमें अपने सबसे बड़े बढ़िया संस्कारों का आनंद नहीं लेने देती। हम उन संस्कारों की स्मृति का आनंद भी नहीं ले पाते क्योंकि वर्तमान में हम सामने वाली परिस्थितियों में जकड़े जाते हैं या कोई अति उत्तम योजनाओं में उलझ जाते हैं। जो कुछ भी हो, किसी भी तरह से मेरी वह कहानी समीक्षा में उभर आती है। मेरी इस कहानी के आधार पर किसी ने मुझे कार्य करने के लिए दिया क्योंकि मेरे पास उसका अनुभव है, तो जाहिर है मैं जब वह कार्य करूंगा तो मेरी वह कहानी शामिल हो जाएंगी उस कार्य के कारण, क्योंकि याद करूंगा मैंने क्या किया था, कैसे किया था, और अभी फिर मैं वही करने जा रहा हूं और फिर वही संस्कारों को अनुभव करते हैं, वही कर्म दोहराते हैं। परंतु अगर मैं वर्तमान में फंस जाता हूं उस कहानी में, बहुत मुश्किल है। हमें वर्तमान में रहना है। वर्तमान क्या है? क्या मैं इन हाथ पैर वाली कहानी हूं या मैं वह आत्मा हूं जिसने 84 जन्म लिए हैं और अब इस शरीर में मौजूद है? इस प्रकार का पुरुषार्थ वर्तमान में मैं कर रहा हूं। एरिक भाई, आपको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जागरूक हैं अपनी वर्तमान अस्तित्व की स्थिति के बारे में। शायद आपको अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु अपने आप में भविष्य से प्रेरणा लेकर भर रहे हैं, क्योंकि भविष्य स्थिति वैसी तभी होंगी जब वर्तमान में उसे बरकरार रखते हैं। केन भाई, वर्तमान क्षणों में मैं सहज आनंद ले रहा हूँ, तितलियों को देखते जा रहा हूँ जो ठीक मेरे नाक के सामने एक फूल के इर्द-गिर्द खेल रही हैं, और सूरज की किरणें पत्तों से निस्पंदित होती आ रही हैं, हल्की सी हवा बहती महसूस हो रही है, और उसी समय मैं हाईवे पर चलती मोटरसाइकिलों की आवाज भी सुन रहा हूँ, और मैं दो प्रकार की दुनियाओं के बीच में अटक गया हूँ। परंतु निश्चित ही मुझे कोई चिंता नहीं कि भविष्य में मैं कैसे रहूंगा। मैं वह भविष्य वर्तमान में अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, भविष्य कोई अस्पष्ट चित्र नहीं है, उसे मुझे अभी प्रत्यक्ष करना है। मेरी भविष्य स्थिति कोई होने वाली घटना नहीं है, उसे मुझे अपने में लाना है अभी। अगर अभी मैं अपनी स्थिति ठीक नहीं कर सकता तो भविष्य में भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। एरिक भाई, क्या आपको भविष्य के बारे में स्पष्ट दृश्य रखने की जरूरत दिखाई नहीं देती? इस कार्यक्रम को दृष्टि से सृष्टि कहते हैं। दुनिया के अनेक लोग विश्व के भविष्य के बारे में सोचने लग पड़े हैं। वर्तमान समय, समय के आघात से हम गुजर रहे हैं, जैसे आकस्मिक गोलीबारी, बिगड़ता पर्यावरण और भी कठोर वास्तविकताएं। मुझे लगता है लोग यह भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी दुनिया का दृश्य कैसे हो सकता है, जो दुनिया व्यावहारिक हो, वास्तविक हो। क्या आपको जरूरत दिखाई पड़ती है कि इस बात की स्पष्टता हो कि हमारा भविष्य कैसे होना चाहिए? केन भाई, जैसे हम जानते हैं कि स्वर्णिम युग में लोक संख्या बहुत कम होगी, हर एक आत्मा की व्यक्तिगत स्थिति सर्वोच्च होगी, हर एक आत्मा कोशिश कर रही होगी अपनी खुद की कहानी शुरू करने में, और सभी के पास एक ही समान पूंजी होगी, वो है आत्मा की मूलभूत स्थिति। हर आत्मा आगे की तरफ खींची जाती है उस भविष्य द्वारा जो उनका बीता हुआ कल था। यह एक बड़ा असत्य सा लगता है। अगर लोगों को अपने सर्वोच्च अस्तित्व की झलक भी मिल जाए तो निश्चित ही वे ज्यादा आशावादी बनेंगे, और मेरा अंदाज है कि यह हमें करना है। जैसे हम जानते हैं कि सभी लोग अपने स्वर्णिम युग के अस्तित्व से नाता नहीं जोड़ पाएंगे, वह जो कुछ भी हो उनके लिए अपना स्वर्णिम युग होगा। उनका पहला जन्म भले 15वीं सदी में हो या 2000 वर्ष पहले हुआ हो या पिछले शतक में हुआ हो, लेकिन हर एक आत्मा अपनी जो कुछ भी हो सत्वप्रधान स्थिति से नाता जोड़ेंगी, इसलिए हमें उनको आशा देनी है। परंतु कपोलकल्पित दुनिया चित्रित न करें जो बहुत ही ज्यादा वास्तविकता से दूर हो, प्रेम प्रसंग युक्त हो। मैं कभी भी ऐसे रास्ते से जाना नहीं चाहूंगा जो बहुत ज्यादा काल्पनिक हो। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि क्या देवताएं बालों पर कंघी फेरते होंगे। ऐसे तो नहीं कि सोकर उठते ही उनके बाल पूर्ववत अपनी स्थिति में पहुंचेंगे, नहीं। हमें व्यावहारिक बातें सोचनी है। वे कंघी जरूर फेरेंगे, हमारे लिए जो व्यवहारिक हो वह शायद सबके लिए न हो। हमें लोगों को उनकी अपनी सर्वोच्च अवस्था को समझने में मदद करना है, फिर वह जो कुछ भी हो। एरिक भाई, मुझे प्रसन्नता है केन भाई कि आपने सत्युग में बालों को कंघी करने का विषय सामने लाया है, परंतु मुझे लगता है कि निश्चित ही जरूरत है कि हमारे पास जो दृष्टांत है उन तक पहुंचने की विधि सोची जो है उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। हम में से कुछ लोग वास्तविकता में होंगे, परंतु बहुत से लोगों के लिए वास्तविकता कुछ अलग होगी। हमारे लिए भी स्वर्णिम युग की कल्पना वर्तमान वास्तविक स्वरूप से थोड़ी हटकर होनी चाहिए। केन भाई, मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि देवताओं के जैसे कपड़े पहनकर और कार्डबोर्ड के मुकुट पहनकर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दुनिया में पवित्रता और अबोधता, निर्मल खुशी और सहज आत्म जागृत अवस्था होनी चाहिए। हमें यह बातें स्पष्ट करनी है। वैसे भी यह मेरी अपनी सोच है, एरिक भाई, मुझे लगता है कि अंत में हमें संपूर्ण चित्र स्पष्ट होगा अंदर का और अपने आध्यात्मिक स्तर का। बचे हुए समय में हम चाहेंगे कि आप पुनः एक बार संक्षेप में अपने चिंतन को कुछ मिनटों के लिए हमारे समक्ष रखें एक मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा। केन भाई, जरूर, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही हूं। अन्य सभी जैसे हैं वैसे हैं।
नेचर इज,
प्रकृति जैसी है वैसी है।
नथिंग,
कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ सिद्ध करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तुलना करने के लिए। मैं अपने सहज पवित्र स्नेह भरे अबोधता में स्थित हूं, बिना जाने कि पवित्रता, प्रेम और अबोधता क्या है। भूतकाल व भविष्यकाल की कोई समझ नहीं है, सिर्फ वर्तमान का अनुभव है। मुझे कुछ नहीं खींचता, ना ही कुछ ढकेलता है। कोई प्रश्न नहीं,
नथिंग टू फिगर आउट,
कुछ निष्कर्ष नहीं। मैं सिर्फ एक अबोध संशोधक हूं इस शरीर रूपी किले के अंदर। मेरे हाथ और पैर मात्र विस्तार है दुनिया में। मुझे नहीं पता मेरे हाथ कहां खत्म होते हैं। सब कुछ एक है।
इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले,
एक यह बहुत सुंदर नाटक है, पर मुझे पता नहीं कि मैं इसमें एक्टर हूं।
Nothing holds me.
मुझे कुछ पकड़ता नहीं
And
और कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि सब कुछ प्रेरणादायी है। कोई प्रेम नहीं, क्योंकि कोई नफरत नहीं है, परंतु सब कुछ प्रेममय है। अलग होने की भावना नहीं है। एक बहुत बड़ा टापू है और हम सभी एक ही टापू पर हैं। मैं वैसा ही हूँ जैसा हूँ और हर कोई जैसे है वैसे है। सब कुछ एक लय में प्रवाहित है। एरिक भाई, मुझे यह बात बहुत सुंदर लगती है कि आप अनेक वर्ष इन शब्दों से खेलते आ रहे हैं और हमें भी वह शब्द देते हो उस सुंदरता को अनुभव करने के लिए अपने गीतों द्वारा, प्यार द्वारा, और अभी आप हमें ले जा रहे हो एक ऐसे अनुभव में जहां हम शब्द कम करते जा रहे हैं, हमारी शब्दावली की साइज कम करने के लिए। धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, Ken, for being with us. It was lovely.
सभी को प्यार, केन भाई।